अभी आप सभी का स्वागत करने के लिए, स्वागत गीत की प्रस्तुति करने के लिए मधुरवाणी ग्रुप पहुंच गया है। सतीश भाई जो पिछले 40 वर्षों से हेडक्वार्टर में रह के अपनी सेवाएं दे रहे हैं, हलधर भाई और निरंजन भाई पिछले 20 वर्षों से ग्लोबल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तीनों के पास बहुत सुंदर गॉडली गिफ्ट है, गीत कंपोज भी करना और गाना। बड़ा उमंग होता है आपको जब भी नया ग्रुप आता है स्वागत गीत की प्रस्तुति के लिए। बहुत ही उमंग और उत्साह के साथ हमारे बीच में मधुरवाणी ग्रुप पधारा है, आप सभी का स्वागत करेंगे।
ओम शांति, ओम शांति। अमरावती वाले बड़े कमाल करने वाले हैं। अमरावती ने बड़े बड़े रत्न निकाले हैं और अमरावती वाले आज यहाँ पर आए हैं तो हम हर्षाय मधुबन वाले हैं, हर्षाय मधुबन वाले हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करने।
ओम शांति। अम्बा माँ सीता बहन बनकर प्यार से पालन करती है, त्यागी तपस्वी योगी तो आत्मा दीदी सबको बनाती है। यज्ञ सेवा में कितनों को योग्य उसने बनाया है, अमरावती बाबा की ज्योति सबके दिल ने गाया है।
क्या बात, बहुत।
सभी मधुबन निवासी हम दिलों से दुआ करते हैं, दिलों से दुआ लुटाते हैं, तपस्वी अमरावती वाले आप राज विराजे हैं, आप राज विराजे हैं।
आज आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे कि राज ऋषि, राज योगी, तपस्वी और राजे महाराजे भी राजे हैं, राज दरबार सजा है। जोरदार एक बार और तालियों से स्वागत।
आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं, आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं, तपस्वी अमरावती वाले आप राजे विराजे हैं। आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं, तपस्वी अमरावती वाले आप राजे विराजे हैं। आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं। अम्बा माँ सीता बहन बनकर प्यार से पालन करती है, अम्बा माँ सीता बहन बनकर प्यार से पालन करती है, और भक्ति में साथी बनकर आपका साथ निभाती है। अम्बा माँ सीता बहन बनकर प्यार से पालन करती है, और हरी मन आपका साथ निभाती है। मौसम खूबसूरत ये है, मौसम खूबसूरत ये सहज सब साज साजे हैं। आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं, तपस्वी अमरपति वाले आप राजे विराजे हैं आज तो आपके स्वागत में। किस्मत वाले हैं जो आप पांडव भवन आए, बड़े किस्मत वाले हैं जो आप पांडव भवन आए। ये चारों धाम यहाँ मिलते सहज ही योग लग जाए। बड़े किस्मत वाले हैं जो आप पांडव भवन आए, ये चारों धाम यहाँ मिलते सहज ही योग लग जाए। है पद्मा पद्म भाग्यशाली, है पद्मा पद्म भाग्यशाली, मुबारक तन मन नाचे हैं आज तो, आज तो, आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं। तपस्वी अमरावती वाले आप राजे विराजे हैं आज तो आपके स्वागत में। ये यादगार भट्टी यहाँ से शक्ति भरती है, बने ये यादगार भट्टी यहाँ से शक्ति भरनी है। वो 14 वर्ष की भट्टी 4 दिन में ही करनी है। बने ये यादगार भट्टी यहाँ से शक्ति भरनी है। वो 14 वर्ष की भट्टी 4 दिन में ही करनी है। सभी मधुबन निवासी हम, सभी मधुबन निवासी हम, दिलों से दुआ लुटाते हैं आज तो, आज तो, आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं। तपस्वी अमरावती वाले आप राजे विराजे हैं आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं। आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं। आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं।
बहुत सुंदर स्वागत गीत की प्रस्तुति करने वाले इन तीनों भाइयों का स्वागत और धन्यवाद। और अभी दीदी हमसे छुट्टी लेंगे और चंद ही पलों में शशि दीदी हमारे बीच में पहुंचेंगे। उनके आने से पहले कुछ और विशेष बातों पर ध्यान दिला दूं। आपको आपका रात्रि का प्रोग्राम कुछ भी नहीं रखा है और उसका कारण है ताकि आप समय पर विश्राम के लिए जाओ और सुबह जब उठो तो बिल्कुल फ्रेश रहो और यहाँ पर आकर क्वालिटी वाला अमृत वेला न कि क्वांटिटी वाला। हाँ, तो अच्छी नींद करना, इसलिए समय को बराबर मैनेज करना है आपको। दीदी हमारे बीच में पहुंचे हैं। तो हम सबके बीच में हम सबके बीच में हमारे आदरणीय राजयोगिनी शशि दीदी जी पधारे हैं। हम एक हाथ हिलाकर दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दीदी हमारे यज्ञ के ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, बहुत ही कारोबार में व्यस्त रहते हैं, लेकिन बहुत सुंदर बैलेंस दीदी के जीवन में इजी और बिजी का, और इसलिए हर बार हर ग्रुप में अपना अमूल्य समय निकालकर अवश्य आते हैं और जो पालना दादियों से ली है वो सर्व पर लुटाते हैं। तो आज हम दीदी से भट्टी के लिए वो शुभकामनाएं, प्रेरणाएं, दादियों वाली पालना अनुभव करेंगे और स्वागत टोली भी प्राप्त करेंगे, और इस स्वागत टोली के बाद आप भोजन पर जाएंगे, समय पर विश्राम, और फिर सुबह 4 बजे यहाँ आएंगे। आपका सम्मान है आज का, मैं तपस्वी मूरत आत्मा हूँ।
ओम शांति, ओम शांति। मधुबन तपस्वी भूमि, प्यारे प्यारे बाबा की श्रेष्ठ चरित्र भूमि, दादियों की तपस्या के साथ साथ श्रेष्ठ कर्म भूमि, और आप सबके अपने ही घर में, अपने ही स्थान पर अपनों के द्वारा अपनों का ही स्वागत है, स्वागत है और स्वागत है। दूसरी बात, आप सभी कितने न भाग्यशाली हैं, ऐसे समय पर आप सबको भट्टी करने का मौका मिल रहा है कि शिव जयंती के दिन है, प्यारे बाबा की जयंती, बाबा कहते बाबा की जयंती के साथ साथ हम बच्चों की भी जयंती है। तो इसलिए आपके होते हुए भी यहाँ मधुबन में शिव जयंती का कार्यक्रम रहेगा, तो बाबा के साथ साथ आपके जन्म दिवस की भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और तीसरी बात, जब कहा कि अमरावती और अमरावती से संबंधित सेवा केंद्र के भाई बहने भट्टी के लिए आ रहे हैं, तो मैंने कहा कितना बड़ा सहयोग है कि अमरनाथ बाबा और अमरनाथ बाबा की नगरी में अमरावती बाबा की नगरी से ही अमर बनने वाले और अमर बाबा के घर में ही पहुंचे हैं। तो बहन तो आपकी सीता हैं, लेकिन हैं सब कौन? पार्वतियां हैं, पार्वती है ना, सीता को या कुछ भी कहो, तो भाई भी कौन है, बोलो कौन है, सीताएं हो या पार्वती, आज बदलो बोलो, अभी शर्म कर रहे हैं ना, नहीं ना, पार्वतियां हो ना। तो कल भी बाबा ने क्या कहा था, बाबा आत्मा को देखता है, गरीब अमीर छोटे बड़े बूढ़े जवान उसको नहीं देखता है। बाबा ने कहा दुनिया की भेंट में कहते हैं ये बाबा के सामने शिव शक्तियां हैं, और दुनिया वाले इनको देख के कहेंगे क्या ये शिव शक्तियां, देखो तो सही बैठे कैसे हैं, देखो तो सही इनकी किस प्रकार से कलयुग के अंदर अपने हरेक के अपने अपने शरीर अपने ढंग से हो गए हैं। लेकिन बाबा ने कहा जिसने बाप को पहचाना, जिसको बाबा ने चुना, वो शिव शक्तियां हैं। तो अमरनाथ बाबा की सब पार्वतियों का पहाड़ी के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। अब आप सब इस भट्टी के अंदर आए हैं, वैसे तो वहाँ पर भी बड़े बड़े सेंटर हैं, रिट्रीट सेंटर हैं, नागपुर में भी हैं, महाराष्ट्र में हैं, और महाराष्ट्र में हमारी सभी सीनियर बहनें भी हैं और महाराष्ट्र जोन के इंचार्ज संतोष दीदी भी बीच बीच में चक्कर लगाती रहती हैं। फिर भी यहाँ भट्टी करने का जो एक आपको बहुत सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इस सौभाग्य के अंदर भी कई राज समाये हुए हैं। सबसे पहले आज के दिन तो मैं अपनी इस नागपुर जोन की सब जोन की पुष्पा दीदी को भी बहुत बहुत याद करती हूँ। और पुष्पा दीदी तो जब नागपुर गई छोटा सा पौधा था, और कैसे हमारी इन सब बहनों को इतनी अच्छी ट्रेनिंग दे करके इतना बड़ा जोन हो गया, एक एक जगह इतनी बड़ी विस्तार को पा गई है, क्योंकि बीज भी बहुत पावरफुल था। और पुष्पा दीदी और हमारा गहरा संबंध है, हो सकता है आपको पता हो या ना पता हो। पता है? नहीं पता है। हम लौकिक में भी आसपास रिलेशन में हैं, और जब मैं करनाल में पैदा हुई तो वो उसी समय वहाँ पर थी और मेरे को उठा करके घुमाती फिराती खिलाती पिलाती थी। और ज्ञान में भी तो हम उसी समय साथ साथ आए, और वो तो फिर बुद्धि की भी बहुत तेज, और बुद्धि के तेज होने के कारण और बाबा की हर शिक्षा का पूरी तरह से पालन करती थी, धारणा में एक्यूरेट पुष्पा दीदी के साथ सावित्री बहन और ये सब धारणा में भी एक्यूरेट उनकी लौकिक माता जी, तो इस प्रकार से वहीं पर ही थे हमारे साथ ही। हम आसपास एक दूसरे के घर के आसपास रहते थे, जैसे ये मकान है तो ये सामने दूसरा मकान है, इस प्रकार से हम रहते थे। और ज्ञान में भी हम सब लगभग थोड़ा सा अंतर है, आसपास ही ज्ञान में आए, लेकिन मैं छोटी वो बड़ी। लेकिन हम सब वहाँ रहते हुए भी जब मैं वहाँ पर थी तो पुष्पा बहन यहाँ पर आ गई, बाबा के पास रही। वैसे तो हम भी बाबा के पास रहे, लेकिन मैं पढ़ाई करती थी फिर नौकरी करती थी और वो तो यहाँ रहे। और उसके बाद फिर बाबा जब अव्यक्त हुए तो हम यहाँ पर आए थे, तो पुष्पा दीदी के साथ मेरे को भी हम दोनों को दादी ने कलकत्ता, पटना और नेपाल भेजा। तो उस समय बात चल रही थी कि नागपुर में सेवा के लिए किसको भेजा जाए, कई नाम निकाले गए थे, आखिर में लॉटरी मिली, आप सबको पुष्पा दीदी पहुंचे। और पुष्पा दीदी वहां पहुंचते ही उन्होंने कितनी प्रकार की सेवाएं की, और वो सेवाओं का फल आज हम देख रहे हैं। इतनी पालना दी है, इतना प्यार दिया है, और वहाँ की धरनी को इतना पावरफुल बनाया है, तो बाबा भी ऐसे भाग्यशाली बच्चों को देख करके उनकी सेवा उनके कार्य को बढ़ाने के लिए ऐसे निमित्त कहाँ ना कहाँ से चुन करके उनको वहाँ पर भेजते हैं। तो आज बाप दादा, एडवांस पार्टियाँ, दादियाँ, मम्मा, दीदी, दादी, सब मनोहर दादी, एडवांस पार्टी और खास करके पुष्पा दीदी और सावित्री बहन और उनकी माताजी का नाम क्या था, हैं, हाँ, किशनी माताजी, तो सब के सब आज वो भी आप सबको देख करके कितना न खुश हो रहे होंगे, क्योंकि उन सब की पालना का ही आज इतनी बड़ी फुलवाड़ी है। तो मैं देख रही थी कि बाबा के घर आते हैं तो बाबा के घर में आने से किस प्रकार से भट्टी करते हुए हमारे पुरुषार्थ के अंदर तीव्रता आती है। कल भी बाबा बता रहे थे कि तीव्र पुरुषार्थी तो सब है, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी होने के साथ साथ बाबा हर समय बच्चों के रिजल्ट भी देखते रहते हैं। उस समय बाबा ने 90 की बात है, तब 3-4 दिन के रिजल्ट देखे, और अभी तो बाबा डेली हर रोज बच्चों के रिजल्ट देखते हैं, और ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों आपस में बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी रू रुहान करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को पूछते हैं आपके बच्चे कब तैयार होंगे, और ब्रह्मा बाबा आपकी फेवर लेते हैं, क्या कहते हैं, मेरे बच्चे तैयार हो रहे हैं हो जाएंगे, ये नहीं कहेंगे थे कि ये सुनते नहीं हैं, तैयार नहीं होते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते हैं। जिसमें घर में माँ होगी ना बोलेगी कोई काम नहीं करता बच्चा, तो कहेगी सुनता ही नहीं है, कितना समझाती नहीं सुनता है। ब्रह्मा बाबा इतना प्यार करते कहते हैं नहीं, ये सब हो जाएंगे और समय आने पर ये सब तैयार हो जाएंगे। तो बाबा रोज आप सबको देखते हैं, आपसे मीठी मीठी रू रोहान भी करते हैं और शिव बाबा फोर्स भरते जल्दी तैयार हो जाए, और ब्रह्मा बाबा कहते जल्दी तैयार तो हो रहे हैं। फिर चलते चलते कभी कभी कई बच्चे कहते हैं शरीर ठीक नहीं है, क्या करें कैसे करें, इससे तो जल्दी विनाश हो जाए। अरे पुरुषार्थ की बजाय सोचेंगे विनाश हो जाए, बाबा कहते पुरुषार्थ करो या विनाश को देखना। तो कई बार बाबा को बच्चे कहते थे बाबा कब वापिस चलेंगे, तो बाबा कहते तुम क्या चाहते मैं चला जाऊं, तुम यही चाहते ना कब चलेंगे, मीन्स मैं चला जाऊं। अरे संगम युग के अंदर कैसे भी हो, शरीर चलता या नहीं चलता है, कैसे भी चल रहा है, बीमार हो सुखी हो, गरीब हो अमीर हो, इतना बड़ा सुख जो संगम युग के अंदर है वो सुख आपको सतयुग में भी नहीं मिलेगा। चाहे कितने राजाई में कितने सुख हो, कितनी प्राप्तियां हो, ये अति इंद्रिय सुख जो है वो वहां नहीं मिलेगा। बाबा ने भी तो कहा था ना कि अति इंद्रिय सुख का गायन किसका है, है? किसका अति इंद्रिय सुख का गायन? गोप और गोपियां जो बाहर से आएंगी ना उनका होगा, आपका नहीं है क्या? अरे बोलो ना, हम गोप और गोपियों का, बाहर वाले तो बहुत ढूंढते रहेंगे कौन होंगी गोप और गोपियां। बाबा कहते तुम सब मेरे सामने बैठे हो और मेरे से मिल रहे हो, बाबा आपको देख करके खुश हो रहे हैं, बाबा को नाज होता है अपने बच्चों के ऊपर। बाबा कहते मेरे लाडले हैं, मेरे सिक्की लदे बच्चे हैं, मेरे नूरे रतन हैं। तो जब बाबा इतना प्यार करता है तो हम क्यों नहीं ऐसा बाबा को प्यार करें? तो बाबा कहते हैं, कभी कभी बाबा पूछते हैं बच्चे ज्यादा प्यार करते हैं या बाबा ज्यादा प्यार करता, अब क्या कहेंगे हैं? बाबा ज्यादा करते हैं, बच्चे नहीं करते हैं ना, करते तो हैं लेकिन माया आ जाती है ना, माया आकर कैसे ना वो जैसे बच्चों के आगे ना ऐसे करते वो आंख ऐसे ऐसे करने लगती है, तो माया आकर के थोड़ा सा झपटा मार देती है, माया आकर के पीछे से ठुंगा लगा देती है, माया आकर के छाया डाल देती है। तो जो बच्चे बाबा को प्यार से याद कर रहे हैं तो वो याद में फिर वो भूल जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा था कि अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए जो दो बातें हमारे सामने कमजोरी के रूप में आती हैं वो है, एक है संकल्प और दूसरा है व्यर्थ बोल। तो जो संकल्प है उस संकल्पों को पावरफुल बनाना, संकल्पों को श्रेष्ठ बनाना, संकल्पों की लाइन को क्लियर रखना, उन संकल्पों से हम बाबा से मिलन मनाए और अपनी स्थिति को पावरफुल बनाते जाए और बाबा से हम सब कुछ प्राप्त करते जाए। तो संकल्पों को पावरफुल करने के लिए सबसे पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना, एक तो पहला ध्यान ये रखना है हम कितने भाग्यशाली हैं जो बाबा ने हमको चुना। अच्छा अब मैं ये और प्रश्न भी पूछूंगी, भाग्यशाली कौन है, सौभाग्यशाली कौन है और पद्मा पद्म भाग्यशाली कौन? जो भाग्यशाली वो हाथ खड़ा करे, कोई भी नहीं, मैं तो कर लेती, ठीक है ना। सौभाग्यशाली वो भी दो चार हैं और पद्मा पद्म भाग्यशाली और जिसने नहीं किया, लेकिन मैं आपको बताऊं ये बड़ा गहरा राज है, हमारी ये तीनों ही स्टेज है। भाग्यशाली वो जिसको बाबा ने खुद चुना, आपको किसने चुना? बाबा ने चुना है ना, निमित बल बहनों को बनाया, चुना तो बाबा ने है। आज जैसे कोई बच्चा कहाँ जन्म लेता है कि किसी अच्छे घर में, राजा के घर में, अमीर घर में लेगा तो कहेंगे इसका कितना बड़ा भाग है। अरे जन्म लिया, उसको पता ही नहीं कि मैं ऐसे अमीर के घर में जन्म लिया। देखने वाले कहते ना कि इसका भाग्य है। तो ऐसे ही जब बाबा ने चुना, केवल चुना ही नहीं, उसके साथ बाबा ने पूरा भाग्य साथ में दे दिया ना। कितने टाइटल्स दे दिए, कितने वरदान दे दिए, जन्म लेते ही खुशी हो गई। कोई भी प्रकार के ऐसे खुशी के नशे में झूमते रहेंगे। हमें भी याद है, या तो आपके भी अपने अनुभव होंगे, जैसे ही पहले दिन बाबा को देखा योग में बैठे, उस नशे में चढ़ गए, उतरते ही नहीं थे। कई कई दिन उस नशे में, दुनिया की कोई बात अच्छी नहीं लगती थी। कारोबार कर रहे हैं, न्यारे और प्यारे होकर के कर रहे हैं, वो तो आप सबके भी अनुभव है। तो बाबा ने वो इतना अच्छा अनुभव कराया, जैसे घर में छोटा बच्चा होता है, सारे उसको प्यार करते, कितना प्यार करते हैं। कोई खिलाएगा, कोई प्यार करेगा, कोई घुमाएगा, कोई उसको टोली खिलाएगा, कितना प्यार करते हैं ना। तो बाबा कहती है भाग्यशाली है, क्योंकि बाबा ने चुना है। सारे विश्व में से कितनों को चुना, कोटों में से कोई, कोई में से भी कोई, हम भी वही है कोटों में से कोई, ठीक है ना। हमको चुना है बाबा ने, तो भाग्यशाली हो गए। तो सौभाग्यशाली कौन है, जब बच्चा बाप को पहचान लेता है तो उसे याद आता है कि मेरी प्रॉपर्टी भी है, मेरे को बाप के द्वारा ये प्रॉपर्टी मिलनी है। तो बाबा ने हमें सौभाग्य कौन सा दिया, अनेक प्रकार के वरदान दिए। हर रोज वरदान मिलता है ना, हर रोज वरदान मिलता है। हर रोज बाबा क्या कहते हैं, तो हर रोज बाबा वरदान देते हैं। फिर बाबा से मिलते थे तो बाबा के पास आते थे, बाबा बहुत वरदान देते थे। जो अव्यक्त बाबा, साकार को तो देखा नहीं होगा, अव्यक्त बाबा से आप मिले हैं तो अव्यक्त बाबा बहुत वरदान देते थे। और अभी भी बाबा के कमरे में जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, बाबा को देखते तो बाबा तो वरदानों की वर्षा करने लग जाते, वरदानों से अपनी झोली भरती जाती है। तो हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। और शोभा पद्मा पदम भाग्यशाली वही बनते हैं जो बाप की श्रीमत के कदमों पर चलते, ठीक है ना। वो है पद्मा पदम भाग्यशाली। जैसे किसी बच्चे को बाप ने प्रॉपर्टी दे दी, अगर वो उस प्रॉपर्टी को ठीक ढंग से यूज नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, कंगाल हो जाएगा, इधर उधर वेस्ट कर देगा, तो खाली हाथ हो जाएगा। अगर बच्चे के पास थोड़ी प्रॉपर्टी है, उसको अच्छी तरह से यूज करेगा तो वो क्या बन जाएगा, मल्टी मिलियनर बन जाएगा। तो हम कौन है, मल्टी 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 मिलियनर, ठीक है ना। पद्मा पदम भाग्यशाली भी है तो सौभाग्यशाली भी। तो मैं बता रही थी कि अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने का, जो बाबा ने कहा ना, पहले तो अपने शुभ संकल्प में खुशी के गीत गाओ। बाबा से ये नहीं कहो बाबा क्या करे, ये समस्या है, बाबा क्या करे, घर में पति नहीं चलता है, ज्ञान में बच्चे नहीं चलते। या माताएं आती ना, कहती बहन जी हमारे लिए योग लगाना, हमारा पति ज्ञान में चले। अरे बताओ तुम, हम क्यों योग लगाएंगे, तुम योग लगाओ ना। कहेंगे मेरे पति के लिए, फिर कहेंगे योग लगाना, मेरे बच्चे ज्ञान में चले, हमारा ये कारोबार ठीक हो जाए। तो बाबा कहते ये क्या है, ये बोझ को और बढ़ाते जाते। आप बाबा के सामने रख दो, जो भी बात है, जो भी संकल्प है, वो बाबा के सामने रखो। वो चिंतन यहाँ भी आएंगे, वही चिंतन है। समस्या हमको मालूम है, आपके सामने समस्या है, कई बातें हैं। तो बाबा कहते भट्टी में आना ही इन सब बातों को बाबा के सामने रख देने का है, और बाबा से रख करके बाबा से बात करते हुए हल्का होना। और दूसरी बात बाबा कहते दृढ़ संकल्प, संकल्प प्योर भी हो, शुद्ध भी हो, खुशी का भी हो, और साथ साथ दृढ़ संकल्प हो। जब दृढ़ संकल्प है तो दृढ़ संकल्प के आगे माया आ भी नहीं सकती, वो दूर से ही नमस्कार करके चली जाएगी। फिर अपने संकल्पों को पावरफुल बनाने के लिए बाबा ने बहुत अच्छा तरीका बताया है। बाबा कहते हर रोज योग में बैठे हुए खुशी के गीत गाते रहो। ब्रह्मा बाबा क्या करते थे, बाबा के पास जाकर के बैठ जाएंगे, कहेंगे बाबा मैं तो कितना सौभाग्यशाली हूँ, शिव बाबा ने चुन लिया, मेरा इतना बड़ा भाग्य बनाया। और ब्रह्मा बाबा बाबा को बहुत प्यार से याद करते थे। ब्रह्मा बाबा ये नहीं कहते थे मेरे इतने सारे बच्चे हैं, कोई कैसा है, कोई पुरुषार्थ करता है, कोई नहीं करता है, कोई कैसे करता है, मैं क्या करूँ। बाबा कहते बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे। बाबा के पास कई प्रकार के बच्चे आते थे, कभी कभी ऐसे भी बच्चे आते थे जिसने कोई भूल कर दी होगी तो बाबा को मालूम होता था, तो बाबा उसको बहुत प्यार करते थे, आओ बच्चे आओ बच्चे। तो बाबा कहते थे अच्छा बच्चे सब ठीक है, कहेगा बाबा मैं क्या बताऊं मेरे से भूल हो गई। बाबा कहते थे कोई बात नहीं भूल जाओ, तुमको समझ आ गई ना, अभी तुम उस भूल को यहाँ स्वाहा कर दो। तो बाबा ऐसे डांटते नहीं थे कि तुमने ऐसे भूल कर दिया, बाबा उसको इतना प्यार देते थे, उस प्यार के अंदर उसको रियलाइजेशन हो जाता था, उस प्यार के अंदर उसको क्या होता था, ऐसा अनुभव होता था कि जैसे बाबा मेरे सामने, ठीक है ना। फिर दूसरी बात, फिर जैसे बाबा ने कहा दूसरी हमारी जो कमजोरी है वो है व्यर्थ बोल। अब व्यर्थ बोल मैंने देखा ब्राह्मणों के अंदर कई बार काफी कम हो चुके हैं, ज्यादा व्यर्थ परिवारों में रहते हैं, कई बातें आती है, व्यर्थ बोल बहुत कम होते जा रहे हैं और उस पर ध्यान रखते हैं। लेकिन कौन से व्यर्थ बोल बोलते हैं, हम ज्ञान में देरी से क्यों आए। अरे बाबा ने चुन लिया फिर भी कहेंगे देरी से आए, हमने मम्मा बाबा को नहीं देखा, हमने दादियों को नहीं देखा, मेरा पुरुषार्थ ढीला है, इसके घर में तो सब ज्ञान में चलते हैं, हमारे घर में केवल मैं ही चलती हूँ, मेरे साथ कोई नहीं। बाबा कहते जो अकेली चलती है उसका पुरुषार्थ और तीव्र। बाबा मुरली के अंदर कहते ना बंदेलियाँ कितने कष्ट सहन करती रहती हैं और बाबा बाबा करती रहती हैं, बाबा को याद करते रहते हैं। तो एक तो व्यर्थ बोल ये, फिर दूसरा व्यर्थ बोल क्या कहेंगे, देरी से क्यों आए। बाबा कहते देरी से आए तो क्या मिल रहा, माखन मिल रहा। पहले आते तो ज्ञान को कितना घोटना पड़ता, अभी तो आपको कितना माखन मिल रहा है, घर बैठे रोज ऑनलाइन क्लास मिलती है। कोरोना में क्या देखा, कितनी क्लासेस किया, इतनी क्लासेस, झोली भरती गई, और यहाँ पर सारा भरता गया, तो वो भी तो भाग्य की निशानी, घर बैठे ही आपको ज्ञान की वर्षा हो रही थी, और अभी तो इतना ज्ञान स्पष्ट रीति से हो गया है, तो फिर देरी से आने का भी फायदा है। लेकिन देरी से आने वालों के लिए एक बार बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी। अब बाबा ने कहा जो बच्चे देरी से, अब ध्यान से सुनना, इसको इधर उधर मिक्स मत कर देना, ठीक है ना। बाबा ने कहा अगर जो देर से आते हैं उनको 25% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते, याद है, ताली बल बजाओ, लेकिन सुनना ध्यान से, इसलिए बोल रहे हो। अभी आप देखो बाजार जाते हैं, बाजार में सेल लगी हुई है, उसमें लिखा 50% छूट, ठीक है ना। अब 50% छूट लिखी हुई है, लेकिन उस दुकान से कुछ खरीदोगे तब तो 50% छूट मिलेगी, या पढ़ पढ़ के जाते रहोगे अरे 50% छूट, 50% कंसेशन, तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिले, कुछ मिला। बाबा ने क्या कहा, 25% एक्स्ट्रा मार्क्स उसको मिलेंगे जो पुरुषार्थ में सीधे चलेंगे, ऊपर नीचे ऊपर, जैसे ना बाबा कहते लाइनों में एक लाइन ऊपर जा रही है, एक लाइन नीचे जा रही है, कभी बैठ गए कभी चल पड़े कभी साइड सीन देखने बैठ गए। तो जो पुरुषार्थ सीधा एकदम ठीक ढंग से करेंगे उनको 25% एक्स्ट्रा मिलेंगे। फिर दूसरी बात बाबा ने ये भी कही है कि कई कहते हैं ना बच्चे बाबा माला तो बन गई है, बाबा ने कहा हाँ माला बन गई है, माला के नंबर भी फिक्स हो गए, लेकिन आपके लिए कितनी मालाएं हैं, मालाएं कि नहीं, याद है कि नहीं है, नहीं है ना याद। बाबा ने कहा एक माला के आगे दूसरी, दूसरी माला के आगे तीसरी, मालाएं तो कितनी है। अब एक माला डालो और एक माला के ऊपर ब्रेसलेट टाइप हो तो कितना अच्छा लगेगा, वो सुंदर लगेगा या वो सुंदर लगेगा। जो खाली एक ही माला हो और उसके साथ साथ कितना डिजाइन बना होता है और उसके साथ साथ तो बहुत सुंदर सुंदर मालाएं लगी होती है, वो दूर से देखते वही अट्रैक्ट करेगी ना। वो माला अपने ढंग की पूजनीय है, लेकिन ये माला है आप बच्चों के लिए। बाबा ने कहा था कि आप तैयार हो, बाबा तो माला बनाने के लिए बैठा है और बाबा तो माला बनाते हैं, लेकिन बच्चों को तैयार होना है। तो तैयार होने के लिए बच्चों को विशेष पुरुषार्थ करना है और उस पर ध्यान देना है। फिर बाबा ने व्यर्थ बोल के लिए एक बहुत अच्छी बात बताई थी, चटनी कौन सी बनाते हो? चटनी अच्छी लगती है ना खाने में, याद है चटनी कौन सी है? एक अच्छी अच्छी बात देखो, चटनी में दो बातें बाबा ने मिक्स किया था, एक तो कि अच्छी अच्छी सेवा समाचार, सेवा समाचार के साथ साथ दो चार ऐसा डाल देंगे कि उसने ऐसा भी बहुत अच्छा प्रोग्राम था, लेकिन वो एक ने तंग किया था, वो चटनी मिक्स हो गई है। फिर दूसरा एक मसाला डाल देंगे, लाल मिर्ची डाल दें, वो व्यक्ति ने बहुत तंग किया था हमको, हमारी सेवा में बड़े परेशान हुए, लाल मिर्ची डाल दी और वो लाल मिर्ची पेट में क्या किया, जलन डाल दी, है ना, जलन हो गई ना। ये है चटनी, है ना, इसकी परचिंतन उसका परचिंतन। तो बाबा कहते ये सब परचिंतन जो है ये आपको चटनी जैसा कुछ तो नुकसान, अच्छी चटनी डालेंगे तब तो नुकसान नहीं होगा, लाल मिर्ची वाली खतरनाक डाल देंगे तो नुकसान भी पहुंचाएगी, होता है भी कभी कभी ज्यादा खा लेते हैं, डॉक्टर कहते नहीं नहीं ये चीज नहीं खानी है, तो वो चीज खा लेते हैं तो नुकसान कर जाती है। लेकिन इसके लिए बाबा ने ध्यान खिंचवाया कि सबके गुणों को देखो। बाबा हमेशा कहते थे बाप का बना है, बाबा कभी अवगुण नहीं देखता है, इतनी सेवा कर रहे हैं, बाप को पहचाना है, तो बाप का बच्चा है तो बाप के गुणों को, बाप जैसे बच्चों के गुणों को देखते हैं ऐसे बच्चों को भी क्या करना है, ब्राह्मण परिवार से प्यार से चल। देखो संगम युग के अंदर ब्राह्मणों के बिना रह नहीं सकते, रह सकते ब्राह्मणों के जहाँ कहीं जाएंगे ना, कोई एक ब्राह्मण बैज वाला दिखा, अरे ये तो अपना भाई जा रहा है, आओ आओ इधर बुलाते रहेंगे, तुम कौन हो कहाँ से आए हो, ब्राह्मणों के बिना रह नहीं सकते, ब्राह्मणों को बिना चल नहीं सकते। अभी ब्राह्मणों में प्यार भी बहुत है, थोड़ा थोड़ा कभी किसी ब्राह्मण से कुछ ऊपर नीचे हो जाए ना, क्लास में बैठे होंगे आगे तो या बाबा की मुरली चल रही होगी, पीछे मुड़ मुड़ के देखे, अरे किसको देख रहा, वो क्लास में नहीं आया ना, आज नहीं आया, क्यों नहीं, अरे क्योंकि दूसरा प्यार है ना उसके साथ उसके साथ वो प्यार है कि उसके साथ इतना प्यार नहीं है, बैठेंगे बाबा की मुरली सुन रहे हैं, देख रहे हैं बाबा को, बाबा आपको देख रहे हैं, लेकिन याद करे उसको पीछे मुड़ के देख, अच्छा आज वो क्लास में आया या नहीं आया, तो उसके बिना रह भी तो नहीं सकते, देखा ना कितना बड़ा प्यार है सूक्ष्म में ब्राह्मणों का प्यार, लेकिन उस प्यार के अंदर इतना राज है कि वो प्यार को हम उसके बिना रह भी नहीं सकते। जैसे दो बच्चे होते हैं ना, वो एक दो के बिना नहीं रह सकते, एक ही थाली में खाएंगे, एक ही थाली में खाएंगे, लड़ेंगे भी जोर से, फिर दोनों को अलग कर दो, एक को दूर बिठा के आओ तो हालत देखने की क्या होती है, क्या हालत होती है, ऐसे मायूस होके बैठते जैसे उसको कुछ चला गया, फिर जैसे उसको नजदीक करो पट 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 शुरू कर देंगे, है ना, बच्चों की तरह करते ना। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण बच्चे एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते, चाहे वो किसी भी रूप में चले जाएं, लेकिन ब्राह्मण ब्राह्मण है, क्योंकि सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक ब्राह्मणों का जो आपसी कनेक्शन रहा है वो कनेक्शन ऐसा है वो कभी भी टूट नहीं सकता है, ना तो हम बाबा से जुदा हो सकते हैं ना बाबा हमसे दूर हो सकते हैं। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। बाबा कहते संगम युग के अंदर सारे वर्ल्ड से हमारा परिवार मिला है, तो इस परिवार के गुण गाते रहो, खुशियों में रहो, उनको खुशियों में लाओ और उनको भी उमंगों में लाओ। फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है आजकल जब भट्टी में आते या कई भी भाई बहने सेंटर पर आते, एक समस्या सारा दिन बोलते, बाबा को कहते बाबा मेरा योग नहीं लगता है, कहते ना, फिर जाएंगे जो भट्टी कराने आएगा भाई या बहन, कहेंगे योग कैसे लगाना चार्ट बता दो, एक कहेगा आपको योग कितने करना है सुबह करना है और इतना घंटा इस समय करना है, इतना घंटा इस समय करना है। अरे बाप रे, तो गिनती का योग करते हो। जैसे कोई मकान के लिए पैसा लिया ना गवर्नमेंट से, लोन लिया, तो गिरवी वो क्या करते, इंस्टॉलमेंट में देते। क्या कहेंगे, इतना इस महीने देना, इतना इस महीने देना, इतना। तो गिनती का योग करते हैं, बाबा को याद करते हो, शुरू से गिनती करना शुरू करते हैं। अमृत वेले योग किया, फिर 15 मिनट मैंने और किया था, फिर क्लास के बाद 15 मिनट और किया था, फिर दिन को 15 मिनट और किया। अरे सारा दिन योग थोड़ी करते हैं, गिनती करते रहते हैं। बाबा कहते हैं ये योग नहीं है, योग का अर्थ है बाप से प्यार। जैसे दादियों को हमने देखा, दादियां सारा दिन काम करते, लेकिन बाबा के साथ जो प्यार था, वो प्यार ऐसा था दादियां बाबा के प्यार में ही समाई रहती थी। तो इसके लिए कभी भी गिनती का योग नहीं करो। चार्ट जरूर लिखो लेकिन गिनती नहीं। मैं देखती हूँ कई बार 8-10 चार्ट इकट्ठे कर लेते, गिनती करते रहते, गिनती करने में ही टाइम गया। बाबा भूला, गिनती करते करते बाबा को भल, बाबा तो नहीं भूलेगा क्योंकि बाबा के लिए याद का चार्ट लिख रहे हैं। तो गिनती का योग नहीं करना, ठीक है ना। इसके लिए अब आपको हर भट्टी में मैं ये कहानी सबको सुनाती हूँ, आपको भी सुना रही, मैंने कहेंगे सब कहा सभी को ये कहानी सुनाती, लेकिन बच्चों के लिए। जैसे बाबा से अव्यक्त हुए ना, तो पहले बाबा मिलते थे हिस्ट्री हॉल में, सॉरी बाबा के कमरे में, फिर हिस्ट्री हॉल में मिलते थे, फिर बाबा के बच्चे बड़े हो गए, बढ़ने लगे संख्या, तो फिर क्या किया जाए। अभी आप जिस हॉल में बैठे, इस हॉल के महत्व को जानते हैं। बाबा के टाइम पर ये स्थान पहाड़ी था, बाबा खुद भी इस पहाड़ी पर बैठ करके योग करते थे। बाबा का चित्र देखा होगा ना ऐसे मोलाई मस्ती में, वो इसी पहाड़ी का है। और बाबा यहाँ बैठ करके योग करते थे, सब दादियों को सबको बुलाते थे। बाबा बहुत रमणीक ढंग से बच्चों को हंसाते भी थे, गीत बजता था धरती को आकाश पुकारे, सब दौड़ दौड़ के आ जाते थे, फिर बैठ तो फिर और गीत बजता था, बाबा आप आ जाओ, ऐसे करके चलता था। बच्चे और बाप के मिलन की रूरोहान चलती थी। तो बाबा यहाँ पर तपस्या भी करते थे, और बाबा के होते हुए इस पहाड़ी पर अंगूर की बेल थी, और जो 24 जून को वो बड़ा बड़ा अंगूर जिसके अंदर बीज भी होता था, 24 जून को बाबा ये अंगूर सभी सेंटर्स पर भेजते थे। 3-4 ग्रुप होता था, एक ग्रुप दिल्ली जाएगा, इधर राजस्थान से होते दिल्ली, और फिर दिल्ली पंजाब हरियाणा, एक ग्रुप महाराष्ट्र जाएगा बॉम्बे जाएगा, एक ग्रुप बेंगलोर जाएगा, ऐसे एक ग्रुप मध्य प्रदेश, ऐसे ऐसे ग्रुप भेजते थे। फिर एक बार बहुत बड़ा ग्रुप आ गया तो सब बच्चे कहाँ बैठे, तो बाबा के लिए स्टेज बनाई थी पांडव भवन के आंगन में, और चारों ही तरफ बाबा के बच्चे। शाम को अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुना तो ऐसा लगता था फरिश्तों की सभा लगी हुई है। तो फिर प्लान किया गया तो कहाँ पर नया स्थान बनाया जाए जहाँ ज्यादा बच्चे बैठ सके। तो ये हॉल 1975 में बन के तैयार हुआ है। अब इस हॉल में डबल फायदा है, एक तो साकार बाबा और दादियों की तपस्वी पहाड़ी है, दूसरा अव्यक्त बाप दादा की वरदानी भूमि है। अव्यक्त बाप दादा यहाँ बैठते थे, उस समय हॉल में कोई भी प्रकार का सोफा या कुर्सी नहीं होती थी, सब के सब हम सब इधर ही बैठते थे, यहाँ ही बैठते थे बाबा, ये हम सब इधर बैठते थे, यहाँ रहते थे तो यहीं बैठते थे, और फिर सब नीचे ही बैठते थे। तो बाबा के टाइम पर क्या था, जब बच्चे आते थे, खटिया आदि तो होती नहीं थी, सब पट में सोते थे। बाबा कहते थे मेरे सब कौन है, पट राजा और पट रानिया है। अब कौन हो आप, अब क्या कहेंगे है? अब तो पलंग मिला हुआ है ना, पलंग राजा तो नहीं कहेंगे ना है? अभी तो यही कहेंगे बाप के दिल तख्त नशीन है। पलंग मीन्स बाप का दिल तख्त ही है ना, जो बाबा ने, बाबा के टाइम पर बाबा हमेशा कहते थे आओ मेरे पट राजा बच्चे, पट रानिया बच्चे, तो ऐसे बाबा कहते थे। उस समय तो सब नीचे ही रहते थे, क्लास में भी कोई नहीं। दीदी के लिए एक कुर्सी यहाँ पर रखी हुई थी, दादी भी नीचे बैठती, सब वरिष्ठ यहाँ, क्योंकि वो तो एज का फर्क था। अभी तो बैठ नहीं सकते, अभी ऐसा मत सोचो कि हमको वैसा करना है। बाबा कहते हैं बच्चों की अपने शरीर की भी पूरी संभाल रखनी है, मन का भी संभाल करना है तो तन का भी संभाल करना है। फिर बच्चे बढ़ते गए, अब क्या किया जाए। फिर ओम शांति भवन बना 1983 में, वहां से अव्यक्त बाबा आने लगे। फिर बाबा ने ये भी कहा था ना कि बाप के मिलने की विधि में परिवर्तन होगा। यहाँ तो हम एक एक बाबा से मिलते थे, ओम शांति भवन में कुछ कुछ एक एक मिलते थे, बाकी ग्रुप ग्रुप मिलते थे। तो एक बार एक विदेश का ग्रुप आया था, तो ये मैंने कहानी कई बार सुनाई, आपको भी सुना देती हूँ, सुनी भी हो या आपने। तो विदेश का ग्रुप आया था, तो एक उसमें एक भाई था, कहता था आज तो मैं बाबा से जरूर प्रश्न पूछूंगा, मेरा तो योग ही नहीं लगता है। तो जब बाबा के पास गए तो बाबा ने उसको वरदान दिया, सहज सदा का योगी। तो सारे हंसने लगे, बाबा ने कहा क्यों। उन्होंने कहा बाबा ये तो कहता मेरा योग नहीं लगता। तो बाबा ने कहा ये क्या कह रहा है, यही तो कह रहा है बाबा मेरा योग नहीं लगता, बाबा मैं आपको भूल जाता हूँ, बाबा मैं क्या करूँ, मैं कैसे आपको याद। सबसे ज्यादा याद तो यही कर रहा है बाबा, बाबा ही तो बोल रहा है, और क्या बोल रहा है, किसी और को थोड़ी याद कर रहा है। बाबा के घर जाऊंगा, बाबा के कमरे में बैठूंगा, बाबा से बात करूंगा, तो सबसे ज्यादा योग कौन लग रहा है, कौन कर रहा है, लेकिन उल्टे ढंग से याद कर रहा है ना। अब चलते चलते गाड़ी चलाते आप उल्टी गाड़ी चलाएंगे तो क्या होगा, थक जाएंगे ना। तो इसमें क्या प्राप्ति कम, काम ठीक कर रहा है, बुद्धि कहीं नहीं है, कहीं दुनिया में बुद्धि नहीं है, किसी चीज में नहीं है सिवाय बाबा के और कुछ नहीं है, लेकिन उसमें थकावट है। तो बाबा भी ये कहते ये मत कहो बाबा हम क्या करें, मेरा योग नहीं लगता, बाबा मेरी बुद्धि घूम जाती है, मैं बैठती हूँ नींद आती है। अरे नींद करोगे तो माया ले जाएगी हमको, क्या माया ही पकड़ेगी ना। तो इसलिए बाबा कहते ऐसा काम मत करने का, ठीक है ना। तो बाबा कहते हैं बाबा को बहुत प्यार से याद करो, और बाबा को बहुत अच्छी तरह से याद करेंगे तो बाबा कहते बच्चे बाबा के बिना रह नहीं सकते, मिल भी सब कुछ रहा है। बाबा ने कहा था ना मुरली के अंदर कि सबको एक जैसा मिलता है, फिर अंतर क्यों हो जाता है, याद है अंतर क्यों होता है, उसको प्रॉपर यूज करने की बजाय लूज करते नहीं, लूज हो जाता है। जैसे लॉक जो है लूज होता, कितना भी उसको लॉक करते रहेंगे वो लूज हो गया तो क्या होगा। तो इसलिए अपनी बुद्धि को लूज नहीं करना, कोई भी प्रकार के कंपैरिजन में नहीं जाना है, कोई भी प्रकार के कंपटीशन में नहीं जाना है, बाबा के साथ कंबाइंड होकर के रहना, ठीक है ना। तो आज आप सबका बहुत बहुत स्वागत है भट्टी के अंदर, और फिर आप सबको बाबा के घर से मुख मीठा कराया जाएगा, क्योंकि आपको पता है बाबा के टाइम पर जब बच्चे आते थे ना, बाबा मिलते थे, बाबा बच्चों को टोली खिलाते थे, और कभी कभी दादी के टाइम पर पार्टी आती थी, दादी आंगन में खड़ी होती थी तो दादी सबको स्वागत भी करती थी, फिर तैयार होकर के कहते थे दादी से मिलने जा रहे, तो उनको पूछते थे अभी तो मिले, कहते टोली क्या खाइए, टोली खाना मीन्स मिलना है, पहला दिन यही होता है ना। तो इसलिए फिर बाबा क्या कहते थे, मेरे कौन से बच्चे हैं पता है, कौन से बच्चे बोलते थे याद है, क्या बोलते थे बाबा, बाबा कहते मेरे सिक्की लदे बच्चे हैं, मेरे लाडले बच्चे हैं, फिर बाबा कहते मेरे टोल पुट हैं। टोल पुट समझते हैं, टोल है स्वीट, सिंधी में स्वीट को टोली कहते हैं, जैसे घर में हम लोग स्वीट को कुछ ना अपने भाषा में अलग अलग कहते हैं। तो बाबा कहते थे क्लब पहले वाले, क्लब के बाद वाले, ये बच्चे मिले हैं बहुत लाडले हैं, बहुत मीठे हैं। तो बाबा कहते आओ टोल पुट, आओ टोल पुट, बाबा उन सबको टोली भी खिलाते थे। तो आज आप सबको प्यारे बाबा की तरफ से मुख मीठा कराया जाएगा, टोली लेने के बाद आप सब भोजन के लिए जाएंगे, फिर विश्राम करेंगे, क्योंकि वैसे तो कल से आए हैं लेकिन फिर भी आज सारा दिन बैठे हैं तो थोड़े थक भी जाएंगे, इसलिए अभी हम सभी दो मिनट बाबा की याद में बैठेंगे।
बाबा तू है अपने पास, लगता है सदा हर पल बाबा तू है अपने पास। जब जब सोचो तेरे बारे में गुलों की सुगंध